का अनुभव बड़ा निराला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। जिसे पाकर न पाना कुछ शेष रह जाए, पाके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाए, साथ अपने है जग का जो रखवाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तेरी आंखों से पीते हम है अमृत प्याले, बड़ी जतन से छुपा कर नजर में हो पाले, तुम्हारे याद के मोती गले की माला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला। बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाड लो मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तेरी नजर का असर दिल ने तुम्हें जान लिया, दिल ने दिल में ही अपना तुझे सब मान लिया, दिल के ताऊस तख्त पर तू दिल वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है।
ओम शांति और गुड मॉर्निंग। कई बार हमने बाबा को ये कहते हुए सुना कि ये गीत जो हैं, ये हमारी गीता हैं, ये गीत ही गीता हैं। तो उन दिनों में तो ये गीत बने हुए नहीं थे, और जो दूसरे सांसारिक गीत हैं उनके बने हुए गीत थे, फिल्मी गीत। लेकिन जब व्यक्ति की वृत्ति और दृष्टि बदल जाती है तो उसका सारा अर्थ बोध जो है, उसका समझने का देखने का जो तरीका है, वही बदल जाता है। तो उन फिल्मी गीतों को सुनकर जब दूसरे दुनिया के लोग कुछ और स्थिति और हाव भाव में चले जाते तो हम लोगों को तो बाबा ने इतना परिवर्तित कर दिया कि उन गीतों को सुनते हुए भी हमारा जो सच्चा आशिक या माशूक है, शिव बाबा जो हमारा प्रियतम है, हमारा साजन है, जिसके साथ हमारे सब संबंध हैं, तो हमारा मन उसके साथ झूम जाता। तो अब के जो गीत बने हुए हैं ये तो जो ज्ञान युक्त, योग युक्त, मर्यादा युक्त, ब्राह्मण कुल भूषण हैं, उनके बनाए हुए हैं। बहुत लोग कहते हैं कि उसकी जो तर्ज है वो आप लोग फिल्मी गीतों में से कॉपी करते हैं। हमें तो मालूम नहीं क्योंकि हम फिल्मी गीत देखते नहीं हैं, लेकिन जो देखते हैं वो ऐसा कहते हैं। कुछ भी हो लेकिन इन गीतों को सुनकर तो जैसे गीता का लोगों को आनंद आता है। आनंद क्या आता है? अल्पकाल के लिए उन्हें कुछ शांति का अनुभव होता है। तो हम जब इन गीतों को सुनते हैं तो हमारे रोम रोम में उस शिव बाबा की यहाँ याद आती है और मन खुशी में झूम जाता है। वैसे ही बाबा के जो अनमोल रहस्य हैं उनकी गहराइयों में हम चले जाते हैं। कई दफा हम कहते हैं कि हमें 3 सर्टिफिकेट लेने हैं, लेकिन जो 3 सर्टिफिकेट लेने हैं जिनमें से एक सर्टिफिकेट ये है कि सब हमसे संतुष्ट हों। संतुष्ट होना तो एक अच्छी बात है, उसका सर्टिफिकेट लेना जरूरी है, वरना उसके बिना तो पास विद ऑनर्स कहला नहीं सकते, फेल्योर ही कहलाएंगे। परंतु उसके से भी अधिक अगर जाएं तो सबके मन से दुआएं निकले। बड़ी बात तो यह है कि केवल संतुष्टि ना हो, ऐसा नहीं कि केवल वो हमसे नाराज ना हो, हमारे साथ उनका कोई मनमुटाव ना हो, कोई अनबन ना हो, कोई मत भेद ना हो, कोई भाव स्वभाव का टकराव ना हो, उसको हम संतुष्ट कहते हैं। कई दफा किसी शब्द की जो परिभाषा है वो नेगेटिव शब्दों में दी जाती है। अब जैसे अहिंसा शब्द है तो बहुत से लोग कहते हैं कि ये नेगेटिव शब्द है, अहिंसा माना हिंसा ना हो। हिंसा ना हो तो क्या हो वो बताओ, पॉजिटिव शब्द बताओ उसका। इंग्लिश में भी कहते हैं नॉन वायलेंस, तो नॉन लगाया हुआ है वायलेंस के साथ, तो वायलेंस की याद दिलाता है ये शब्द। उसकी बजाय कोई पॉजिटिव शब्द हो। तो वो मैं कह रहा था कि मनमुटाव ना हो और भाव स्वभाव का टकराव ना हो, कोई नाराजगी ना हो, सब हमसे जिसको हम कहते हैं संतुष्ट हो। मेरे ख्याल में ये शब्द गीता में संतुष्ट शब्द जो है कई बार आया होगा, 10-12-15 बार तो आया होगा भिन्न भिन्न प्रसंग में। उस संतुष्ट शब्द को अगर देखा जाए तो उसकी भिन्न भिन्न व्याख्या, भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं कि संतुष्ट का क्या भाव है। संतुष्ट का केवल यही भाव नहीं है कि लोग हमसे नाराज ना हो, हमारी कंप्लेन ना करें, हमसे कुछ उनका भेद ना हो, ऐसा ही नहीं, बल्कि उससे अधिक जो स्टेज है संतुष्टता की, उनके मन से, उनके जिगर से, उनके दिल से हमारे लिए दुआएं निकलें, वो इतने हमसे प्रसन्न चित्त हों, मुदित हों, खुश हों, हमसे निहायत खुश हों कि उनके मन से ये निकले कि व्यक्ति हों तो ऐसे हों, दुआ निकले। जैसे बाबा के लिए गीत बने हुए हैं, तुम्हारे साथ का अनुभव निराला है, जिन्होंने बाबा के साथ जीवन के अनमोल दिन बिताए वो अनुभव तो अविस्मरणीय हैं, उन जैसे अनुभव दुनिया में कहीं नहीं हो सकते। लोग एडम और ईव की कहानी बताते हैं, ब्रह्मा और सरस्वती के शब्दों से शास्त्र भरे पड़े हैं, लेकिन जिनको मौका मिला उन विभूतियों के साथ रहने का, उनका व्यवहार, उनका उठना बैठना, उनके मन की स्थिति, उनका देखना निहारना, उनके बोलने का तरीका, जो सारा कुछ था, काम कराने का तरीका, आगे बढ़ाने का तरीका, वो तो दुनिया में कहीं देखने को मिल नहीं सकता। तो इसलिए वो एक जीवन की अनमोल निधि है, जिसका कोई मोल नहीं, कोई मुकाबला नहीं उस चीज से। तो वो मन से निकलता है, उसको कोई भुला नहीं सकता। अगर कोई तलवार लेकर भी कहे, जैसे गुरु गोविंद सिंह के बच्चों के लिए कहते हैं कि जब उनको दीवार में चुनाया जा रहा था तो उनको कहा गया कि अल्लाह अकबर बोल दो, ये कलाम बोल दो और हम तुम्हें कई रियासतों का नवाब बना देंगे, नहीं तो देखो बाकी दो चार ईंटों की ही ऊंचाई रह गई है, गर्दन तक तो तुम आ गए हो दीवार में, अब इसके बाद खत्म हो जाओगे, क्या फायदा, क्यों किसी के बहकावे में आते हो। तो उन्होंने क्या कहा, कोई परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि उनको जो लगन थी, जो उनकी तत्परता थी, जो उनके मन में एक विश्वास था, वो अटूट था। और वो जिसका जितना गहरा अनुभव होता है, उसके लिए वो क्या कुछ करने को तैयार नहीं होता। तो वो भी जो हमारे साथ रहे, बजाय इसके कि वो ये कहें कि ये तो निकम्मा आदमी है, अरे आपको पता नहीं लोग इसके विषय में बहुत अच्छी बातें कहते हैं, हमसे पूछो जो हम इनके साथ रहे हैं, ये तो बहुत दुख देते हैं, हमें रुलाया है कई बार, हमारे आंसू आए हैं और हमें सिताया है, इन्होंने तंग किया है। हमारे लिए कोई ये कहे इस संगम के जीवन में, जब हमने भगवान को प्राप्त किया है जो सुख और शांति का दाता है, ये टेंशन फ्री तो बहुत मामूली छोटी सी बात है, लेकिन कोई गदगद हो जाए हमसे मिलकर और कहे कि अरे भाई ऐसे व्यक्ति तो मैं ढूंढ रहा था दुनिया में, कहीं दिखाई नहीं देते थे, मैं तो निराश था। लोग कहते हैं कि भगवान ने ये सृष्टि रची और हमें मालूम नहीं था, हम समझते थे कि यही सृष्टि होगी जो भगवान ने रची है, और जब हम यहाँ के लोग देखते थे तो हम समझते थे भगवान को कोई अच्छे इंसान बनाना ही नहीं आता। अब हमको मालूम पड़ा कि भगवान ने तुम्हें गढ़ा है, तुम्हें बनाया है, तुम्हारे जैसे आदमी बनाता है। हम मानते हैं कि भगवान है, और हमें किसी सबूत की, तर्क वितर्क की, वाद विवाद की, फिलॉसफी की, लॉजिक की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, जिसको कहा जाता है कि हमारा व्यवहार, हमारे कर्म ऐसे हों जो सबके मन से दुआएं निकले। कितना बड़ा अंतर पड़ जाता है, एक तरफ ये कि हम कंप्लेंट करें या लोग हमारे बारे में कंप्लेंट करें, दूसरी तरफ ये कि हम भी सबके गुण गाएं और लोग भी हमारे गुण गाएं, और हमारे गुण गाएं या ना गाएं उसकी परवाह नहीं, प्रभु के गुण गाएं कि जिसने हमें रचा, और हमें देखकर वो समझे। क्योंकि कहते हैं गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई, सृष्टा का जो गुण स्वरूप कर्म उसका स्वभाव होगा, वो झलकेगा उसकी रचना में, ये अनिवार्य है, ये एक शाश्वत सत्य है, एक का दूसरे के साथ अटूट संबंध है। तो अगर हम में ऐसे गुण होंगे जिसको लोग कहेंगे भाई ये तो देवता जैसे हैं, देवी जैसे हैं, तो देवी देवता बनाने वाला जो है, तो मेव मम देव देव, वो जो परमात्मा है, उसकी तरफ स्वतः ही हर एक का ध्यान जाएगा। तो ये इस तरह के जो गीत हम सुनते हैं, जिसको मैंने कहा कि बाबा कहते कि ये गीत ही हमारी सच्ची गीता है, तो उनको देखकर हमें फिर से मन में ये भाव आना चाहिए कि क्या हमारा, जिनके साथ हम रहते हैं रात दिन, जिनके साथ हमारा उठना बैठना है, एक होता है रिलेशनशिप, एक होता है वर्क रिलेशनशिप, वर्किंग रिलेशनशिप। अब कोई व्यक्ति घर में है, कोई उसकी पत्नी है, कोई उसका बेटा है, कोई उसकी बेटी है, ये उसका ब्लड रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप है। लेकिन जब वो ऑफिस में जाता है, कोई उसके अंडर उसका प्राइवेट सेक्रेटरी है, कोई उसका स्टेनोग्राफर है, कोई उसका बॉस है, वो वर्किंग रिलेशनशिप है, वो भी रिलेशनशिप। कई प्रकार के रिलेशनशिप्स होते हैं, तो वो जो उसका वर्क रिलेशनशिप है वो कैसा है। हम सेंटरों पर आए हैं अलग अलग घरानों से, अलग अलग कल्चर से, अलग अलग हमारी जीवन पद्धति थी, बैकग्राउंड हर एक का अलग अलग है, लेकिन आकर जब हम उस परमात्मा के कारण से सब आपस में मिले, वही निमित्त बना, तो अब हमारा वो जो वर्किंग रिलेशनशिप है सेंटर्स पर हम रहते हैं, वो हमारे कार्य और व्यवहार से आता है, झलकता है। हम एक दूसरे को जी हां कहते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की बेहतरी या उसको आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं या नहीं सोचते, इस तरह के जो हमारे भाव हैं। बाबा की प्रत्यक्षता का जो सबसे बड़ा एक उपाय है वो ये है कि नई सृष्टि, नया परिवार, जो ईश्वरी परिवार हो, जो दुनिया से बिल्कुल भिन्न हो, जिस जैसा और कोई मिले नहीं, वो लोगों को देखने में आएगा कि बाबा ये तो बहुत फर्क है, देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस। जैसे कहते हैं भाई, चाक जो चूना है, जिस चाक से हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं वो भी सफेद है, और चीज जो पनीर है वो भी सफेद है। तो चाक खाने की चीज तो नहीं, खाने की चीज तो पनीर है, हैं दोनों देखने में सफेद। तो कहा जाता है देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन चाक एंड चीज, बोथ आर व्हाइट बट वन इज ईटेबल द अदर इज नॉट। एक चीज खाई जा सकती है, दूसरी नहीं खाई जा सकती। इंसान तो है देखने में, आंख कान नाक वगैरह तो वैसे ही है सबके, ढांचे बने हुए, सांचे बने हुए, लेकिन उसके जो स्वभाव और कर्म और गुण हैं वो उसमें अंतर है। वो अंतर लोगों को देखने में आना चाहिए, महान अंतर जो है कि वो कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, जैसे वो बताते हैं, दोनों में कितना अंतर है। उसका भपका, उसकी शालीनता, उसके राजकुलोचित कर्म और वो तेली के अपने ही बोलने के तरीके, बड़ा फर्क होता है। तो हम तेली हैं या राजा भोज हैं, इस पर डिपेंड करता है कि हमारा व्यवहार क्या है वास्तव में। तो ये बात तो गीत के प्रसंग में रही, लेकिन कल जब मैं समाप्त कर रहा था तो मैंने कहा कि कुछ बातें रह गई हैं, लेकिन हम उसको अधिक विस्तार में न लेके आज के विषय को लेना चाहेंगे। परंतु कुछ एक बातें कल के प्रसंग में भी ऐसी हैं जो आज से संबंधित हैं, और वो बात ये कि जब हम समर्पण की बात करते हैं, डेडिकेशन, डिवोशन जिसको हम कहें, उसमें एक एक अंग प्रत्यंग, जिसको कहते हैं संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग, वो शीतलता हमारे अंगों में कैसे आएगी जब हम सब उस शिव बाबा को समर्पित कर दें। तो समर्पित करने का जब हम एक मोटे रूप से कहते हैं कि हमारा तन भी, मन भी, धन भी, बुद्धि भी, हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, बाबा तेरे हैं, इस क्षण से, इस पल से, इस घड़ी से हम तेरे हैं, जैसे हैं तू हमें संभाल ले, हमें हमारा कल्याण कर, तेरे हाथ में हम हैं, तू जो हमें कहेगा ये हमारा वचन है, हम वैसे ही करेंगे, ये वचन हम निभाएंगे, और आपका जो वचन है कि मैं आपको सब पापों से मुक्त करा दूंगा और सब विकारों से छुड़वा दूंगा, दुखों और अशांति से बिल्कुल निजात दिला दूंगा, आप अपना वचन पूरा करेंगे ही, तो ये उसका और हमारा एग्रीमेंट एक प्रकार से हो जाता है। उसमें जब हम समर्पण की बात कहते हैं तो उसको हमें महीनता से, गहराई से, विस्तार से, स्पष्ट रूप से ये समझना चाहिए कि हर एक इंद्रिय समर्पित। हमें खाने के चस्के हैं कुछ, ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, या अब उस मालिक की मर्जी है हमें जो खिलाए जो पिलाए, या हमारे अपने कुछ लफड़े हैं कि ये चीज चाहिए वो चीज चाहिए। हमें देखने की हमारी जो दृष्टि और वृत्ति है वो कैसी है, जब ये हमारे नेत्र हमने भगवान को समर्पित कर दिए तो भगवान क्या चाहेगा, उसके द्वारा हम कैसे देखें, वो कैसे यूज करना चाहेगा उसको, प्रेम से, स्नेह से, सद्भावना से, किसी को कल्याण की दृष्टि से, आत्मिक भाव से, उसका जो देखना होगा वो देखना ही ऐसा होगा कि बिल्कुल अन्य सामान्य व्यक्तियों की तुलना में वो बड़ा अलौकिक होगा, اور بابا کہتے ہیں کہ سی نو ایول، برائی مت دیکھو. کیا ہم ہر ایک کی برائی نوٹ کرتے رہتے ہیں، اوگن نوٹ کرتے رہتے ہیں؟ تبھی تو دوسروں سے ورنن کرنے کو ملتا ہے ہمیں میٹیریل ڈیلی. ہمارا سماچار پتر ہی الگ پرکار کا ہے، ٹائمز آف انڈیا اور انڈین ایکسپریس تو الگ نکلتے ہیں، ہمارا اپنا نیوز پیپر الگ ہے. دیکھو آج ہم آپ کو بتائیں، آج پھر اس نے میرے سے جھگڑا کیا. ہاں آج پھر جھگڑا کیا، کیوں کیا کہتی تھی؟ ارے اس کی تو عادت ہے، تم جانتی ہو روز جھگڑا کرتی ہے. آج میں چائے پینے گئی کچن میں، اس نے یہ کہا وہ کہا. یہ آج کا سب تازہ سماچار یہ سنیے. وہ ہے تھا نا مڈ ڈے نیوز، ایوننگ نیوز، آج کل تو ہر وقت نکلتی ہیں. یہ آج کی تازہ خبر. تو ہماری خبروں میں کیا بھرا ہوا ہے؟ یہی بھرا رہتا ہے. تو بابا کہتے ہیں ہیئر نو ایول، ٹاک نو ایول، سی نو ایول. ہمیں ہر ایک کرمیندری کا کیا پریوگ کرنا ہے، یہ تو نیگیٹو ہے. لیکن بابا کہتے ہیں کہ پازیٹو طریقہ کیا ہے، ہمارے مکھ سے کیسے رتن نکلیں، کسی کے پرتی ایسے شبد نکلیں کہے واہ واہ اور کہو کچھ. ایسا نہیں کہ کسی کی تعریف کے پل باندھتے رہیں، لیکن بابا کے اس نے جو ہم خزانے دیے اس کے گن گاتے رہے ہم، اور بھکتی مارگ میں بھی لوگ گیت گاتے رہتے ہیں، لیکن اب ہمارے من سے کس کے گیت نکلیں گے، اس ہردے وینا سے کس کی جھنکار نکلے گی. تو ہم اگر اس پرکار سے ہمارے مکھ سے بول نکلیں، ہمارے نین جو ہیں اس کو بڑی میٹھی درشتی سے اور سنیہ بھاو سے، دوسرے کے پرتی سد بھاونا سے، اس کے پرتی کلیان کی درشتی سے، کسی کی کوئی خرابی ہمیں دکھائی دی، ایسے تو نہیں آنکھیں بند کر کے ہم رہتے ہیں. آنکھیں اگر ٹھیک نہ ہوں تو آنکھیں والے کے پاس جا کے ٹھیک کرا کے آتے ہیں. کہتے ہیں نا بھائی کہاں جا رہے ہو، کہتے ہیں آنکھ دکھانے جا رہا ہوں. آنکھ دکھانے کے دو مطلب ہوتے ہیں، آنکھ دکھانا مانا آپ جانتے ہی ہیں، تبھی تو آپ ہنس رہے ہیں. لیکن وہ جو ہمارے نیتر ہیں، جس کو کمل نیتر، کمل مکھ، کمل ہست ہم کہتے ہیں، وہ کیسے بنیں گے؟ جب ہم اس کو سمرپت کریں گے. تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری جو کرمیندریاں ہیں، اگر ہم اندریاتیت بننا چاہتے ہیں، کسی نے کہا بھائی اندر کی پوجا، ویدوں میں اندر کی پوجا ہے. آپ دیکھیں گے کہ کافی حصہ تو ویدوں کا اندر کی پوجا سے بھرا ہوا ہے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اور یہ ان کو وچار ہے کہ جو یہ ورشا کرنے والا ہے یہ اندر ہے. لیکن اندر شبد کی اگر آپ سنسکرت میں ویاکھیا دیکھیں، جس نے اندریوں کو جیتا وہ اندر ہے، وہ گیان ورشا کرتا ہے. جن منوشوں کے من شانتی سے نہ رہی ہو، سوکھ گئے ہوں، جن میں مانوتا سوکھ گئی ہو، جن میں نیتکتا سوکھ گئی ہو، ان پر وہ گیان ورشٹی کر کے جو اس کو ہرا بھرا کرتا ہے، جو اندریوں کو جیتا ہوا جس نے ہے، وہ اندر ہے. تو وہ اس کا سپشٹیکرن ہے. تو اندر پد کے دیوتاؤں کا جو ادھیپتی ہے وہ اندر ہے، اور وہ برہما کے سمتل ہے. برہما کا ایک نام اندر ہے، کیونکہ اس نے سب اس کو جیتا، اندریوں کو جیتا. اندریوں کو جیتا کیسے؟ کہ اس نے سب اندریاں جو ہیں وہ بھگوان کے سمرپت کر دی. تو اگر ہم اپنے پرشارتھ میں لگے رہیں گے، میں نہیں سمجھتا، بالکل نہیں مانتا، اس بات کو ماننے کے لیے کسی بھی حالت میں تیار بھی نہیں ہوں کہ ہم کوئی اپنے من کو خود ٹھیک کر سکتے ہیں یا اپنی اندریوں کو خود جیت سکتے ہیں. اگر ایسا ہوتا تو بہت یتی ستی ہوئے، بہت لوگوں نے سادھنا کی اور ان بھی نہیں کھایا، اپواس ہی اپواس کرتے رہے، جنگلوں میں رہے، دنیا سے دور رہے، سب اپائے جتنے بھی دنیا بھر کے اپائے ہو سکتے ہیں، جو ہر ایک سادھنا میں کرسچنز نے، بودھوں نے، جینیوں نے، یہ ویرائٹی ہے، ان کے اپایوں کی ویرائٹی ہے. اگر ان سب کا سنگرہ آپ کریں تو آپ دیکھیں گے کسی بھی پرکار کا اپائے لوگوں نے چھوڑا نہیں ہے. لیکن ان سب سے آج تک کوئی بھی اندری اتیت، اندری جیت اور اندری اتیت، یہ دو الگ چیزیں ہیں. اندری جیت اور اندری اتیت کوئی بنا نہیں ہے. جس کو اندریوں کا بھان ہی نہ رہے، وہ کہتے ہیں بھائی کمبھکرن کہتا تھا کہ میں بھی اندر بن جاؤں. آلسی ویکتی کمبھکرن جیسا، وہ تو آلسیوں کا مہا منڈلیشور تھا جو کمبھ تھا، وہ کہتا ہے میں بھی اندر بن جاؤں. تو तो उसको कहा गया तुम इंद्र का जाप करो, तो कहता है इंद्र इंद्र इंद्र, तो उसके मुख से इंद्र की बजाय निद्रा 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 निकलता गया। तो इसलिए कहते हैं कि वो इंद्र की बजाय सोया ही रहा, निद्रा उसको मिल गई, गलत बोलता रहा, इसलिए वो जो रामायण में उसकी व्याख्या देते हैं कि कुंभकर्ण ज्यादा सोता क्यों था, क्योंकि चाहता तो इंद्र बनना था लेकिन इंद्र इंद्र निद्रा निद्रा कहते कहते वो निद्रा स्वरूप ही हो गया, सोया रहा। आलसी की भी तो हद होती है ना, जो छह महीने तक सोया रहे, भांग पीने के बाद चरस पीने के बाद भी आदमी एक दो दिन में तो जाग जाता है, जो छह महीने सोया रहे वो कौन सी चीज पीता होगा, यही उसने जाप किया निद्रा का। तो अब जब हम इंद्रियों को पूर्ण रूप से समर्पित करें, राजा जनक की मिसाल बाबा आमतौर से मुरली में देते हैं कि वो कहता था उसने सन्यासियों की सभा रची और उनको कहा कि मैं मन को कैसे जीतूं। गीता में भी राजा जनक की मिसाल है और जानकी दादी को बाबा कहते थे राजा जनक। तो वो राजा जनक की जो मिसाल है बहुत गाई हुई है कि राज करते हुए भी वो विदेह था, विदेह माना उसने देह के भाव से देह के भान से उपरांत था, विदेह अवस्था जिसको हम अपने अव्यक्त अवस्था कहते हैं अपनी भाषा में। तो देह होते हुए भी हम विदेह कैसे हों, जब है देह तो विदेह कैसे हों, जेब में हमारे पैसे हों और हम कहें कि हमारे पास तो कुछ नहीं, ऐसा तो नहीं, जो चीज है हमारे पास वो तो है, देह होते हुए विदेह कैसे हों। तो उसका भान नहीं, उसका भाव नहीं, उसका अभिमान नहीं देह का, ऐसी स्थिति उसको कहते हैं भाई वो जनक बना। जनक शब्द का मतलब है पिता, जो जानकी का मतलब है कन्या, वो जनक की पुत्री थी और जनक उसका पिता था, ये कोई प्रॉपर नेम नहीं है, भाव एक कन्या और उसके पिता की कहानी बताई गई है, जैसे हम कहते हैं देर वाज़ ए किंग एंड देर वाज़ ए प्रिंसेस, उस प्रकार से कहानी बताई गई है। दीज आर नॉट प्रॉपर नेम, दीज आर जनरल नेम्स, ये नाम देकर सारी आगे बात बढ़ाई गई है। वो किसान की तरह से हल चला रहा था, बीज में से वो निकली, तो वो मटके में से कोई थोड़ी निकलता है, ऐसे ही पैदा होने लगे तो फिर डॉक्टरों का धंधा ही खत्म हो जाए, ये सारे गायनोकोलॉजिस्ट तो एक ही दिन में डिसमिस हो जाए सब, कोई ऐसी बात तो होती नहीं। तो वो जिस जो सारे शब्द के जो अर्थ हैं वो सारे आध्यात्मिक अर्थ हैं, भाव अर्थ हैं उनके। सीता शब्द का अर्थ क्या है, जहां से मेड़ से निकली उसका क्या भाव है, वो जो इस कलश से निकली उसका क्या भाव है, उसकी सारी रामायण की कोई व्याख्या अगर हम आपको बताएं तो आपको आश्चर्य हो कि बिल्कुल ये तो इसका भाव ही दूसरा है, रामायण वही की वही होगी लेकिन आप देखेंगे उसका भाव बिल्कुल ही अलग है, आध्यात्म रामायण है वो, लोगों ने उसको नाटक बना रखा है। तो राजा जनक ने वो जो सन्यासियों की सभा रची तो उसमें उसने ये कहा कि आप में से कोई ऐसा है जो ये मुझे ऐसा कोई तरीका बताए जिससे कि मैं अपने मन को जीत सकूं। आपको मालूम है एक तो उसमें अष्टावक्र की बात आती है कि जिसके शरीर में आठ वक्र थे, अष्टावक्र माना जिसके शरीर आठ जगह से मुड़ा हुआ था, बेंड्स एंड ट्विस्ट थी उसमें, तो उस पर हंसे थे सन्यासी देहाभिमानी। और उस बात की बात नहीं कह रहा, उसने कहा था कि जैसे घोड़े पर चढ़ने में टाइम लगता है, जितना एक रकाब में पांव रखो और दूसरे उसकी पीठ से दूसरी टांग पार करके घोड़े की पीठ पर बैठो, तो इतने टाइम में मुझे कोई ऐसा उपाय बताया सहज बिल्कुल जिसमें इंस्टेंटली मेरा मन वश हो जाए। तो वो बताते हैं भी अष्टावक्र ने उसको कहा हो सकता है मैं बताता हूं, अच्छा तुम बताओ। तो उसने कहा कि ऐसा है कि ये, और कहता है अगर तुम ये करा दोगे तो मैं आधा राज तुम्हें दे दूंगा। उसने कहा नहीं मुझे वो नहीं चाहिए। उसने कहा अच्छा सारा ही राज दे दूंगा, तुम्हारे चरणों पर बैठूंगा। तो उसने कहा मुझे आधा ही नहीं चाहिए, सारा भी नहीं चाहिए, मुझे राज नहीं चाहिए। तो उसने कहा क्या चाहिए बोलो, और मेरे पास तो यही है। कहता है नहीं तुम्हारे पास एक चीज और है, वो मुझे दे दो। तो उसने कहा मांग लो, मेरे को यही चीज चाहिए। तो उसने कहा कि उतने समय के लिए मन मुझे दे दो, मन मुझे दे दो, जिसको बाबा कहते हैं मन मना भाव, मन मुझे दे दो। तो मन जब उसको दे दिया तो मन में फिर अपने भाव से कुछ नहीं सोच सकता वो, क्योंकि वो तो उसका हो गया। अब वो जो कहेगा उसको वही सोचना पड़ेगा, उसका अपना मन ही नहीं रहा तो वो अपना विचार कैसे करेगा। मन जब उसने सरेंडर कर दिया, समर्पित कर दिया अष्टावक्र के, तो वो सोच कैसे सकता है। तो इसलिए उसने कहा कि सही बात कह रहे हो, कहते हैं हाँ। उसने कहा फिर उसमें से तुम कोई संकल्प नहीं कर सकते, जो संकल्प मैं कहूंगा वही करना पड़ेगा। कहते हैं जब आपको दे दिया तो आप जो कहेंगे वो आप वही करूंगा। तो उसी में ही उसका मन स्थिर हो गया, कोई संकल्प उसको नहीं आया, और फिर उसने देखा शांति मिली उसको, और उसने सोचा यही तरीका है। इसलिए गीता में बार बार आता है, मन मना भव मध्यादि भव माम एव नमस्कुरु, तू मन मुझ में लगा, एक मुझे ही याद कर। ये उपाय है, ये छोटे छोटे जो फार्मूलाज हैं, ये हमारे जिसको बाबा कहता है युक्ति से मुक्ति मिलती है, ये युक्तियां हैं मुक्ति की। ये युक्ति के ये जो फार्मूलाज हैं, हम युक्ति समझते हैं जो चलाक आदमी चलाकी करता है उसको हम कहते हैं बड़ा युक्तिवाद आदमी है, वो युक्ति नहीं। समझदार तो वो व्यक्ति है जो अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो ये जो हमारी युक्तियां हैं जिससे मुक्ति मिलती है, मन मना भव, ये वो है युक्ति। थोड़े से शब्द हैं मन मना भव, दो तीन शब्द, और उस दो तीन शब्द से पीएचडी ले सकता आदमी। पीएचडी तो कुछ भी नहीं है, पीएचडी का दूसरा मतलब है आध्यात्मिक, वो मैं बाद में कभी बताऊंगा। वो तो आप सभी पीएचडी बन रहे हैं, लेकिन वो प्राप्त हो जाता है जो पद है उसका। तो जो कल समर्पित भाव की मैं बात कह रहा था, वो इतना गहरा सब्जेक्ट है समर्पित भाव का कि फिर हम कुछ सोच नहीं सकते। अगर हमने मन बाबा को दे दिया है तो केवल जहां उठाएगा, जहां बिठाएगा, जो खिलाएगा, जहां रखेगा, उतना ही नहीं, बल्कि हमारे मन में कोई भी संकल्प और ऐसा नहीं आ सकता जो हमारा मालिक ना चाहे। जिसको हमने मन दे दिया फिर उसके ही हवाले जब हो गया तो जो वो कहेगा वही करना पड़ेगा। तो बाबा कई दफा कहते हैं मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। बच्चे कहते हैं कि बाबा मैं आपका गुलाम हो गया। लोग तो स्लेवरी को या गुलामी को बड़ा खराब समझते हैं, आजाद होने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका भाव आप समझने की कोशिश करें। तो बाबा कहता है बच्चे मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। कितना बड़ा एग्रीमेंट है, दुनिया में इससे बड़ा एग्रीमेंट कोई नहीं हो सकता। हम कहते हैं बाबा हम तेरे हो गए, और बाबा कहता है मैं अपने सर्वस्व सहित तुम्हारा हो गया, मैं तेरा गुलाम हो गया। बहुत दफा आप देखते हैं बाबा आते हैं और कहते हैं आज बाबा को आना नहीं था, लेकिन बच्चों से प्यार है, बच्चों ने याद किया तो बाबा को आना ही पड़ा। बाबा बच्चों की रेस्पेक्ट करता है तो बाबा को आना पड़ा, रीत की रीत निभानी पड़ी। तो देखिए सर्वशक्तिमान परमात्मा, और वो गोपियों के लिए कहते हैं कि उसको नचाती थी घुंघरू बांधकर। कृष्ण के लिए कहते हैं ना भाई उसको घुंघरू बांधकर, या तो वो जो ओखली का है उसको लेकर वो खूब नचाती थी। तो वो स्वयं भगवान को भी सूरदास के गीत लिखे हुए हैं, रस खान के गीत लिखे हुए हैं कि किस प्रकार से उसको नचा सकते परमात्मा को। ये किसमें था? गोपी। गोपी शब्द का क्या अर्थ है? गो इंद्रियों को कहते हैं, और पी माना समाप्त कर देना। जिसने इंद्रियों को समाप्त कर दिया उसको गोपी कहते हैं। तो जिसमें ये गोपी भाव आ जाता है जो कि इंद्रिय से अतीत हो जाए, कहते हैं भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए, ये शरीर रूपी वस्त्र चुरा लिए, यानी जिनको शरीर का भार नहीं रहा। मथुरा में जाओ तो अभी भी एक वृक्ष है उस तालाब के किनारे पर, जहां पर साड़ियां कुछ लटका के रखते हैं, पंडे लोग जाके दिखाते हैं, कहते हैं जी ये हैं साड़ियां जो भगवान ने चीरहरण किए थे। तब से लेके वो आजकल के जमाने की छपी हुई साड़ियां वो दिखाते हैं, और अंधविश्वासी लोग यही समझ कर आते हैं, वहां लटकी हुई है आप जाके देखें। ये भी कोई नहीं पूछता कि ये 500 वर्ष पुराना ना तो वृक्ष है और ना ये उस जमाने की साड़ियां हैं। पहले हमारे देखते देखते साड़ियों के रिवाज बदले हैं, पहले साड़ियां कैसे होती थी अब कैसे होते हैं। लोग जाके देखते हैं उसको कि ये गोपियों की साड़ियां हैं भगवान ने चुराए, वो भी जाके चुराते हैं, पुलिस में रिपोर्ट होती है उनकी, क्योंकि भगवान ने चुराया तो फिर उनकी क्या बात है। तो देखिए उनको भगवान की किसी ने कोई, उन दिनों में कोतवाली नहीं होगी या पुलिस नहीं होगा या पुलिस कमिश्नर नहीं होगा या ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं होगा या विमन कमीशन नहीं होगा, किसी ने माताओं का केस लड़ा नहीं होगा, कुछ होगी बात। तो वो जो इंद्रियों को जब तक हमने समर्पित नहीं किया है, योग लग ही नहीं सकता। जो मनमना भाव या जो हम कहते हैं समर्पण भाव जब तक हमारा नहीं, हमने अपने आप को दिया ही नहीं, हवाले ही नहीं किया भगवान के, तो कर्मातीत अवस्था जिसके विषय में आज मैं कुछ कहने जा रहा हूं, कर्मातीत अवस्था की बात तो अलग रही, हमारा योग लग नहीं सकता। बहुत से लोग जो कहते हैं कि हमारा योग नहीं लगता, उसका कारण यह है कि जो पहला लेसन है, मैं देही हूं, देह नहीं हूं, आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। अशरीरी जो स्टेज है, जो आत्मा के स्वरूप में हम टिक जाएं, क्योंकि वो कई दफा हम बिजली की तारें दिखाते हैं ना कि कैसे वो आपस में मिलती हैं तो फ्लेम निकलता है, उसका रबड़, उसका प्लास्टिक, उसका इंसुलेटिंग मटेरियल हटाया जाता है, जब जाके वो स्पार्क पैदा होता है, करंट से करंट मिलती है। तो शिव बाबा से हमें लाइट और माइट मिलेगी कैसे, वो जोड़ जुड़ेगा कैसे, लगेगा कैसे? तो अभी तक हमने समर्पित ही नहीं किया। हम आपको बताते, अगर हम उसके हैं और वो हमारा है, अगर उसमें समर्पण भाव नहीं है तो योग नहीं लग सकता। लोगों के योग में और हमारे योग में यही अंतर है। ये जो राजयोग है, ये पतंजलि का योग भी राजयोग कहलाता है, उसमें ये बात नहीं है कि परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाना। लोग तो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूं, परमात्मा का जीव जो है परमात्मा का अंश है, वो तो समर्पित होने की बात ही नहीं करते। हमारे ज्ञान का मूल आधार ही ये है कि तुम मेरे समर्पित हो जाओ। और मैंने आपको ये कहा कि आप ये तो 84 जन्म लेते हैं, लेकिन एक मिनट के लिए ये मिथ्या अनुमान ही चलो लगा लीजिए, विच इज इम्पॉसिबल, कि आप करोड़ जन्म भी लेते रहिए, आप अपने मन को ठीक कर ही नहीं सकते। ये दर्शन का सिद्धांत है, फिलॉसफी का असूल है। बहुत गहराई से, बहुत विस्तार से ये डिस्कस हुआ है कि क्या मनुष्य को मुक्ति मिल सकती है। अब मैं मिसाल दूं आपको, बहुत से लोग कहते हैं कि अनेक जन्मों के बाद मिलती है। आप ये सोच लीजिए कि मैं इस जन्म में योग का अभ्यास करता हूं, पवित्र रहता हूं, मर्यादा पूर्वक चलता हूं, मेरा बीच में शरीर छूट जाता है, मेरी अपनी जो कमियां हैं, एक स्टेज ऐसी आती है जो मेरा संस्कार मेरा पीछा छोड़ता नहीं, बहुत कोशिश करता हूं लेकिन वो इतना गहरा है, इतना कड़ा है कि उसको मिटा नहीं पाता, और आखिर मेरी आयु तो लिमिटेड है, कितना जीऊंगा, शक्ति भी लिमिटेड है, इंद्रियां शिथिल होती जा रही हैं, प्राण कमजोर होते जा रहे हैं, शक्ति शरीर को छोड़ती जा रही है। एक ऐसी स्टेज आ जाती है जो साधना करने के योगी भी मैं नहीं रहा जो पहले मैं कर सकता, तो उसके बाद क्या होगा? मेरे जो पुराने जो 63 जन्म के विकर्म हैं तो बहुत है, एक एक क्षण, एक एक मिनट, पता नहीं क्या मैंने गलत काम किए होंगे जो कि मुझे पता भी नहीं, इतनी मलिन बुद्धि हो गई है जो मुझे याद भी नहीं। वरना आत्मा में एक क्षमता है, अगर आत्मा पूर्ण पवित्र हो तो उसकी ये भी योग्यता है कि देख सके वो। आखिर हम परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा में अगर वो दृष्टि है तो हम में उतनी ना सही कुछ तो होगी, होनी तो चाहिए। लेकिन मन इतना खराब हो चुका है, ये शीशा इतना मैला हो चुका है कि हम देख ही नहीं सकते पास्ट में हमने क्या क्या लफड़े किए, तो उन विकर्मों को मैं दग्ध कैसे कर पाऊंगा? और तब तक तो मेरा शरीर छूट जाएगा, और शरीर छूटने के बाद दूसरा जन्म लूंगा, फिर मैं वो गलत काम करना शुरू कर दूंगा। कौन सा संघ मिलेगा, कौन से लोग मिलेंगे, कैसी मेरी पालना होगी, क्या मेरे विचार होंगे, दोस्त कौन से होंगे, मित्र संबंधी क्या होंगे, फिर मैं मेरा योग भ्रष्ट हो जाएगा या क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से तो लगे रहो, चलते रहो, विकर्म दग्ध हो ही नहीं सकते और आत्मा का कल्याण हो ही नहीं सकता। एक ही उपाय है कि वो परमात्मा ही हमारा कल्याण कर सकता है, वही हमें इन विकर्मों से मुक्त कर सकता है, हमारे सब संस्कारों को शुद्ध बना सकता है, हमें पूर्ण रूप से योगी बना सकता है, इंद्रियातीत स्थिति में हमें ले जा सकता है। और वो यही सारे कल्प में एक समय है, इस समय को गंवा दो। वो कहते हैं भाई, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, ये मौका फिर हाथ में आने वाला नहीं है, इसलिए उसका नाम कल्याणकारी है। सबसे पहला पाठ यही है कि एक ही कल्याणकारी है, उसके अलावा कहीं इधर उधर भटकोगे, दृष्टि लगाओगे। वो कहते हैं एक पक्षी था, सागर में उड़ रहा था और जगह 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 उड़ता था, पानी ही पानी था, कहीं बैठने की जगह थी नहीं। आखिर जिस जहाज से उड़ के गया वो घूमने,
वापस उसी जहाज पर आके बैठता था, और कोई था ही नहीं। तो इसी प्रकार से संसार सागर में और कोई ठोर ही नहीं है, और कोई ऐसा आश्रय ही नहीं है, कोई जिसका सहारा ही नहीं है कि जिसको लेने से हमारी मुक्ति, जीवन मुक्ति हो सके। समझे कि नहीं समझे? जिसको बाबा कई दफा कहते हैं बच्चा, अच्छा बच्चे समझे, और हम कहते हैं समझे, कुछ भी नहीं समझे, और हम कहते हैं कि हाँ समझे। अगर हम इस बात को समझ गए तो लग क्यों नहीं जाते उसमें? तो पहली बात हमें ये ख्याल रखने की है कि जब तक हम अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से समर्पित नहीं करेंगे, मन को समर्पित नहीं करेंगे, समर्पण भाव हमारा संपूर्ण नहीं होगा, न सर्वगुण संपन्न बन सकेंगे, न संस्कार शुद्ध हो सकेंगे, न मुक्ति, जीवन मुक्ति की वो जो उत्तम स्टेज है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। भगवान के बनेंगे खाली हाथ तो नहीं जाएंगे, कुछ तो देगा वो, नहीं मिलोगे तो जबरदस्ती जेब में भी डाल के तुम्हें भेजेगा, खाली तो भेजेगा नहीं वो। लेकिन जो चीज आपको चाहिए वो नहीं मिल सकती। तो योग के लिए भी ये चीज आप समझ लीजिए कि अगर हम योग लगाना चाहते हैं, उससे मेल मिलाना चाहते हैं, वो परम पवित्र, उससे अगर हम योग, और वो इंद्रियातीत अशरीरी, वो इनकॉर्पोरियल, और हम जब तक कॉर्पोरियल बने रहेंगे, कॉर्पोरियल तो खैर है, शरीर तो छोड़ के नहीं चले जाएंगे, जब तक हमारा ये भान या भाव या अनुभव या अभिमान देह से कनेक्टेड होगा, तब तक हमारा योग लग नहीं सकता। आप करते रहिए कोशिश, ट्राई योर बेस्ट। सिद्धांतिक रूप से थ्योरेटिकली भी पॉसिबल नहीं, प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं, आप उसका कोई एक्सप्लेनेशन दीजिए कि हाँ जी हो सकता है, दिस इज द वे, दिस इज द अल्टरनेटिव, हो ही नहीं सकता। तो इसलिए अगर योगी बनना हम चाहते हैं, हमने अपने जीवन का ये लक्ष्य निर्धारित किया है, तो चलते फिरते उठते बैठते जो हमारा गलत पाठ हमने पढ़ लिया है, जो हम में मिथ्या ज्ञान आ गया है, और हम अपने को देह समझने लगे हैं, उस भाव को भूलें कैसे? जो मनुष्य के संकल्प हैं, विचार हैं, उसके विश्वास हैं, उसके निश्चय या निर्णय हैं, उनको निकालने का तरीका क्या है? जो मन में बहुत गहराई से दबे हुए से हैं, उनको निकालने का तरीका है कि उसका अपोजिट विचार आप करें। मैं देह हूं, मैं देह हूं, मैं देह हूं, जन्म जन्मांतर हम इस भाव में चलते रहे, और अब वो इतना पक्का हो गया है कि उसको, हाँ जी, वो कहते हैं जो आदत हो गई पक्की, उसको उसका छूटना मुश्किल, धागों का बना रस्सा उसका टूटना मुश्किल, वो इतना पक्का हो गया है कि अब उसका टूटना ही मुश्किल। अब जब तक हम ये नहीं सोचेंगे मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ज्योति स्वरूप हूं, मैं लाइट हूं, मैं माइट हूं, मैं परम धाम से आया हूं, मैं अशरीरी हूं, मैं शिव बाबा का बच्चा हूं, ये संकल्प अगर आप नहीं चलाते रहेंगे, सृष्टि चक्र नहीं चलाते रहेंगे, तो ये योग का लगना ही असंभव है। आप ट्रैफिक कंट्रोल के गीत बजाते रहिए, रेड लाइट करते रहिए, पालती मार के बैठे रहिए, आंखें खुले रखिए, बेशक सामने देखिए, ब्रिक्विटी पे देखिए या नेत्रों में देखिए, डू वट एवर यू लाइक, लेकिन ये अनुभूति तब तक नहीं हो सकती, ये पक्की बात है। तो अब रही बात कर्मातीत स्टेज की, क्योंकि हमेशा लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए, ठीक है आपका योग जितना भी लगे, लेकिन लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखिए कि मुझे कर्मातीत स्टेज को प्राप्त करना है। ये नहीं कि अच्छा जैसा कैसा ठंडा मीठा कुछ भी योग लग जाए। अगर पहले से ही हम यही सोचेंगे कि कुछ भी मिल जाए, थर्ड क्लास भी पास हो जाए, हम हो जाएं, तो फिर तो हो सकता है कि फेल भी शायद हो जाए। और अगर हम ये सोचें कि नहीं नहीं हम तो पूरी तरह से पढ़ेंगे इसको और इसका अध्ययन करके हम कुछ प्राप्त करेंगे, तब कुछ प्राप्त होगा। तो वो जो कर्मातीत स्टेज है, जो जिसकी बात मैं आपसे थोड़े से टाइम में जो बाकी बचा है कहने जा रहा हूं, उसके तीन भाव हैं कर्मातीत स्टेज के। वो कैसे प्राप्त हो, उसके लिए क्या अभ्यास करें, उसका एक अलग सब्जेक्ट है, वो भी उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन कर्मातीत स्टेज के तीन भाव हैं, उन तीनों को साथ में लेके आप चलेंगे तो कर्मातीत स्टेज की अनुभूति होगी। लेकिन ये है परम आवश्यक, सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि परम धाम में जब हम चले जाएंगे, जो सोल वर्ल्ड है, उसमें तो अनुभव की बात नहीं, हम देह में तो होंगे नहीं, वो तो हर एक को प्राप्त होगी ही होगी। इस शरीर में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए, हमें वहां का अनुभव यहां हो, कर्मातीत स्टेज का, उस जैसा कोई और अनुभव ही नहीं है, उस जैसा कोई प्राप्ति कोई उपलब्धि ही नहीं है, वो अतुल है। उसकी तरफ अगर हमारा ध्यान नहीं है, हम बाकी सब कामों में पड़े हुए हैं, तो मैं समझता हूं कि हम बहुत गुमराह हैं, भूले हुए हैं, हमने अपने असली लक्ष्य को छोड़ दिया है। ये सर्वगुण संपन्न मनुष्य देवता ये सब बन जाएंगे अपने आप ही, लेकिन कर्मातीत स्टेज का अगर हमने स्टेज अभ्यास नहीं किया, ये भी कुछ नहीं बनेंगे। ये सब कुछ उसमें आ जाएगा अगर हम उस स्टेज का पहले अनुभव करने की कोशिश करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे। और उसके लिए मैंने आपको बताया कि उसके तीन भाव हैं। उसका एक तो यह है कि हम बिल्कुल ही देहातीत स्टेज में हों, देह का भान जरा भी रंच भी ना हो, देह की दुनिया का संकल्प जरा भी ना हो, देह के व्यक्ति और वस्तुएं, संसार की जो स्थूल प्रकृति के बने हुए पदार्थ हैं, या जो देहधारी हैं, देह के जो संबंधी हैं, उनके साथ लगन की लागत की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन वो मूर्तियां, ये हम मूर्ति पूजक कहलाएंगे अगर वो मूर्तियां हमारे मन मंदिर में आएंगी, तो उनमें से कोई भी ए टू जेड, चाहे वो कितना ही महान देहधारी क्यों ना हो गुणों की दृष्टि से, लेकिन किसी भी देहधारी की स्मृति ना आए हमें, बिल्कुल उस स्टेज में हम हों, देहातीत स्टेज में, कर्मातीत स्टेज में। उसको हम कहेंगे परम धाम में जब आत्मा होती है तो इस प्रकृति की दुनिया से पार होती है, परात पर, परे से भी परे, जिसको कहते हैं परे नहीं, परात पर, परे से भी परे, आप कहेंगे उससे परे, पर उससे भी परे, परे से भी परे, जिससे और परे कुछ नहीं है। तो वो जो जिसमें लाइट और लाइट है दुनिया में, गोल्डन रेड लाइट है जो निराकारी दुनिया है, उस गोल्डन रेड लाइट में एक मैं और एक शिव बाबा, तीसरा कोई नहीं, देहधारी कोई नहीं, देह के प्रकृति के पदार्थ कोई नहीं। वो जो मेरी स्टेज है, उस स्टेज पे मैं जाऊं और उसका अनुभव करूं, ये उसका एक पहलू है, उसका विस्तार बाद में कभी बताएंगे। लेकिन दूसरा जो कर्मातीत का आस्पेक्ट है वो ये है कि संसार में जब मैं कर्म करूं तो कर्म का जो हानि लाभ निंदा स्तुति मान अपमान हर्ष शोक होता है, कर्म के साथ कर्म फल जुटा हुआ है, तो उस कर्म फल से मैं प्रभावित ना हूं, उसमें संसार में कर्म करते हुए भी, कर्म योगी माना है जो कर्म करता है शिव बाबा को याद रखता है, लेकिन वो कर्म योगी भी प्रभावित हो सकता है, लोग उसकी बहुत महिमा करें, बहुत ऊंची सफलता मिल जाए तो खुश हो जाएगा, और इतना पैसा खर्च करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद काम सब गलत हो जाए और लोग कहेंगे इसने तो काम गलत कर दिया, तो हो सकता है ज्यादा ना सही थोड़ा उसका मन में आ जाए, दुख आ जाए, कुछ डिप्रेशन आ जाए कि ये तो नुकसान हो गया। नहीं, जो इससे जरा भी प्रभावित ना हो, साक्षी दृष्टा होके उपरामचित होके इस संसार से संसारातीत होकर वो देखता रहे, और वो उस स्थिति में मानी मान अपमान हानि शोक वगैरह का जो है उस पर कोई भी असर ना हो, जिसको हम कहेंगे कर्मातीत स्टेज, यानी कर्म के फल से भी अतीत। और तीसरा उसका पहलू यह है कि जो कर्म हम करते हैं, हम कर्म कर रहे हैं ऐसा भी हमारा भान ना रहे, हमसे करा रहा है शिव बाबा, हमसे करा रहा है, हमने जो शरीर और कर्मेंद्रियां उसको दे दी हैं, अब इस गाड़ी का ड्राइव करने वाला, चलाने वाला, इसको काम में लगाने वाला, हम इंस्ट्रूमेंट हैं, हम निमित्त मात्र हैं, इससे कार्य लेने वाला वो है जिसके प्रति हमने समर्पित कर दिया है। इसमें बहुत मेहनत चाहिए, अभ्यास चाहिए, काफी चिरकालीन अभ्यास चाहिए, जब जाकर ये स्टेज बनती है, ऐसे नहीं बनती। ये तीनों भाव जब हमारे तीनों प्रैक्टिस साइड बाई साइड इकट्ठी चलें, तब हमें वो जो निराकारी स्थिति है, बीज रूप स्थिति है, जो बिंदु रूप स्थिति है, उसका अनुभव हो सकेगा। लेकिन ये तीनों चले, हमको ये उम्मीद ना रहे हमेशा कि हमने अच्छा काम किया है, किसी का ध्यान ही नहीं, बड़ों ने कुछ एक शब्द भी हमें महिमा का कहा नहीं, एप्रिशिएट भी किया नहीं, ये आशाएं तृष्णाएं जो हमारे मन में लगी हुई है और इनसे जो हम प्रभावित होते हैं, बल्कि उत्सुक रहते हैं, उसके लिए हमें उत्कंठा बनी रहती है, प्यास जैसी बनी रहती है, तो ये योग से बहुत दूर हैं, हम बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं, कोसों दूर हैं। कैसे हम अपनी अंतिम स्टेज को प्राप्त करेंगे। तो हमें ऐसी स्टेज का अभ्यास करना चाहिए कि हम अपनी मस्ती में मस्त रहें। इसको ही सेल्फ रेस्पेक्ट कहा जाता है। हम जो हैं सो हैं, हम जो मेहनत कर रहे हैं वो हमने किसी से सर्टिफिकेट लेना है कि हमने मेहनत की है। हम दूसरों पर डिपेंडेंट हैं, वो अगर हमें पास कर दें तो पास हो गए, फेल कर दें तो फेल हो गए। हम कुछ नहीं अपने कर्मों को जानते। हमारा कार्य यह है कि हम अच्छे कर्म करते चले। बाबा ने जो हमें मर्यादाएं बताई हैं, नियम बताए हैं, कर्म के विधि विधान बताए हैं, उसके अनुसार हम कर्म करते चलें।
हम जो शिव बाबा के लिए कहते हैं कि वो करण करावन हार है, हमारा कर्म करते हुए भी ऐसा अनुभव हो कि करण करावन हार वही है, वही करा रहा है, वही कर रहा है, वही करा रहा है। ऐसा अनुभव हो जैसे देह हमारे साथ है ही नहीं और वह उसको दिया हुआ है और वही इसके द्वारा काम ले रहा है। तो ये जब हमारी स्टेज होगी कि वही करण करावन हार है और हम तो निमित्त हैं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें यश मान ये टेम्पररी थोड़े से समय इस डिवाइन फैमिली में कि हाँ ये कहें ये बहुत अच्छा सर्विस करते हैं, इनकी बुद्धि बहुत अच्छी है, इनकी योग्यता बहुत अच्छी है, ये फलां काम को जानते हैं, उस पर अगर हम डिपेंडेंट रहे तो इंडिपेंडेंस तो हुई नहीं, स्वतंत्रता तो हमारी आई नहीं। अगर हमें 10 आदमियों ने कह दिया ये खराब है तो हम खराब हो गए और 5 आदमियों ने कह दिया अच्छा है तो अच्छे हो गए, ये तो बेपेंदे के लोटे हुए। हमारा अपना तो कोई पेंदा है ही नहीं। जैसे वो थाली का बैंगन जैसे होता है लुढ़क जाता है, उसी टाइप से हमारी हालत। तो हमें अपने उस बाबा के आधार पर कि वो करण करावन हार स्वामी के हाथ में हम निमित्त हैं, हमको कर्म करते चले जा रहे हैं, जिसको कहा गया कर्मण एव अधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तुझे कर्म पर अधिकार है, फल की चिंता तू ना कर, तू उस तरह से चलता चल। तो ये अगर वो भाव हमारा रहेगा फिर उसका अभ्यास और अनुभव की बात हो सकती है। तो कहने का भाव ये है कि ये तीनों का जब तक हमारा साथ साथ अभ्यास नहीं चलेगा तो हमें उसकी अनुभूति नहीं होगी। लेकिन आप देखते हैं कि हमारे यहाँ और भी बहुत सारी स्टेजेस का वर्णन किया जाता है, जिसमें से हम एक फरिश्ता की स्टेज या अव्यक्त स्टेज कहते हैं। तो कर्मातीत स्टेज और अव्यक्त स्टेज में क्या फर्क है? जब हम थोड़ा बहुत भी इस प्रकृति के देह को, स्थूल देह को, उसके भान को छोड़कर जो सूक्ष्म प्रकाशमय फरिश्तों जैसा जैसा शरीर, हल्कापन, जब हमारी वैसी स्थिति हो कि हम संसार के जो रिश्ते हैं या जो प्रकृति की चीजें हैं उनसे मन हमारा उपराम हो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत देह के भान में हों, मान लो उठते रहते हों, खुश रहते हों, मौज में रहते हों, ज्ञान युक्त रहते हों, पवित्र रहते हों, वो हमारी अव्यक्त स्टेज है। उसमें भी देह से काफी हद तक हम ऊपर निकल जाते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से अशरीरी स्टेज नहीं है वो। वो फरिश्तापन की स्टेज है, अव्यक्त स्टेज है। जो मैं कर्मातीत स्टेज की बात कह रहा हूं, ये तो जब हम विकर्मों से, विकारों से, नेगेटिव थिंकिंग से, शरीर की याद से, देहधारियों की याद से, ये देह के संकल्पों के, प्रकृति के पदार्थों के, इन संकल्पों से छूटकर मैं आत्मा हूं जो ज्योति बिंदु का मुझे एक समझाया गया है, उस स्वरूप में जब मैं टिकूंगा कि मेरा अपना वास्तविक स्वरूप क्या है, उसको हम कहते हैं कर्मातीत स्टेज, जो कि संसारिक स्टेज ना होकर जिसको हम कहें भाई अदरवर्ल्डली, इस लौकिक नहीं। वो जो फरिश्तापन की स्टेज है वो तो अलौकिक स्टेज है, ये कर्मातीत की जो स्टेज है ये एक प्रकार से पारलौकिक स्टेज है। ये परम धाम में जब हम अपने को अनुभव करें उस लाइट में, ब्रह्म तत्व में, और आत्मा रूप से केवल और भाव और संकल्प उसमें हमारे मर्ज न हो, संकल्प हमारे इमर्ज ना हो, वो जो हमारी स्टेज है एक लाइट और माइट का गोला हम अपने को अनुभव करें, बस और कुछ नहीं, उसी में ही समाये वो हो, उसमें हमें ऐसा अनुभव होगा कि जैसे लाइट और माइट हमारे पर उतर कर और जैसे हमारे शरीर से निकलकर हमारे आत्मा से विकीर्ण होकर हम उसको रेडिएट कर रहे हैं,
उसकी बहुत करेंट्स पावरफुल सारे संसार में फैल रही हैं। आपने जो वो एक इलस्ट्रेशन ऑफ राजयोग है उसका जो टाइटल है उस पर देखा होगा, एक योगी बैठा हुआ है, लाइट आ रही है और लाइट और वाइट उसको घेरे हुए सब तरफ फैल रही है। तो आप ऐसा लगेगा जैसे शरीर छोड़ने थे एक मिनट पहले की जैसे स्टेज हो, जैसे ऐसे लगेगा कि ये देह तो है ही नहीं। वो बाद में आप सोचेंगे जब उस स्टेज से नीचे उतरेंगे और कुछ समय के बाद जब आपका बोलना शुरू होगा या किसी से वर्णन कर पाएंगे, पहले पहले तो एकदम डीप साइलेंस में होंगे या एकदम बोला भी नहीं जाएगा और एकदम लगेगा कि जीवन है तो यही है, अनुभव है तो यही है। इस स्थिति को हम छोड़ के क्यों इस चक्कर में आते हैं, उस टाइम ऐसा महसूस होगा। लेकिन जब आ गए चक्कर में उस स्थिति में तो फिर आप सोचेंगे कि वो जो स्टेज थी, वो जो अनुभव था लाइट और माइट की, आनंद की, शांति की, जिसमें सर्व अनुभूतियां समाई हुई थी, निहायत बहुत ही पावरफुल स्टेज थी, बहुत ही लाइट और माइट की स्टेज थी। तो वो जो स्टेज होती है उसमें बाबा कहते हैं हमारे विकर्म दग्ध होते हैं और हमारे संस्कार का परिवर्तन होता है। जो मोल्ड हो हमारे संस्कार और गोल्ड सच्चा सोना हम बने, वो उसी स्टेज से बन सकते हैं, उसके अलावा किसी स्टेज से नहीं बन सकते। तो वो पावरफुल उसका अनुभव हम करें, उसके लिए जो दूसरी दो चीजें मैंने बताई कि कर्म करते हुए भी हम उसके जो रिजल्ट है उसके प्रभाव में ना आए, निंदा स्तुति मान अपमान में ना आए और इंद्रियों से अतीत हों, जब तक ये साथ साथ हमारे नहीं चलेगा तो ये अनुभव भी होगा नहीं, इनका कनेक्शन है आपस में। तो उसको करने के लिए ये करना जरूरी है, लेकिन दोनों चीजें कनेक्टेड हैं। जैसे जैसे आप कर्मातीत स्टेज का अनुभव योग से करेंगे वैसे वैसे ही आप इंद्रियातीत और देहातीत होंगे, और जैसे जैसे आप देहातीत और इंद्रियातीत होंगे वैसे वैसे ही आप उसकी स्थिति में टिक सकेंगे। तो दोनों का आपस में एक डिपेंड करता है, एक दूसरे पर आश्रित है। इसलिए मैं कह रहा था कि साथ साथ इनका अभ्यास चलना चाहिए। तो अब हम थोड़ी देर जो हमें समय मिल गया है, गोल्डन चांस, हम उसका अभ्यास करते हैं। अब रखिए कापियों को और बाल पेन को एक तरफ और उसका थोड़ा अभ्यास हम करें। चलें उस कर्मातीत स्टेज पर, उस न्यारी और प्यारी स्टेज पर, जिसको सचमुच में न्यारी और प्यारी स्टेज हम कह सकते हैं। आप इजीली आराम से जैसे भी आपको अच्छा लगे सुहाए वैसे बैठें और रिलैक्स होकर परमधाम में। वो ये था कि बैठे हुए भी हम चल रहे थे और उन्होंने कहा कि हम चल रहे हो तो भी हम वहां बैठे होते हैं, तो दोनों बातें अपनी अपनी जगह ठीक थी। और बाबा ने कहा भले हम चल रहे थे लेकिन तो भी हमारा मन जैसे दुनिया वालों का चलता है वैसे नहीं चल रहा था, हमारा मन तो वहीं स्थिर था, बैठा हुआ था। तो अब जो हम अभ्यास करेंगे, भाई लाइट वैसे ही रहने दो, ये कोई लाइट को मंद करने की जरूरत नहीं, लेट इट बी लाइट, लाइट और माइट स्वरूप है हम। तो पहले पहले आप जिस भाव में टिकें, जिस स्मृति में, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति होती है, तो पहले पहले आप मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं जो ये सोचें, तो आपके सामने वो ज्योति बिंदु ही आनी चाहिए, वो अपने मन से खिसकनी नहीं चाहिए, बुद्धि हमारी उसमें रहे। लेकिन आप ये सोचें कि आपके चारों तरफ लाइट है, वास्तविक जो हमको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। बहुत से लोग जो संसार में भी भक्ति मार्गी हैं, कई प्रकार का जो अभ्यास करते हैं, वो भी देखते हैं कि हमारे चारों तरफ आरास होते हैं, लाइट होती है, किसी का किस कलर का, किसका किस कलर का, जैसा उसका स्वभाव हो, संस्कार हो, वो आरास होती है। लेकिन हम लोग उस योग्यता को गंवा चुके हैं जिससे कि हमको वो लाइट का अनुभव हो या दिखाई दे। अभी भी जब आप योग में बैठेंगे या बैठने का अभ्यास करते रहेंगे तो आपको हर एक के आसपास लाइट दिखाई देगी, मैं ये समझता हूं, मेरा अनुभव है और उसके आधार पर मैं समझता हूं कि आपको हमेशा महसूस होगी। उसी से ही बल्कि हम किसी व्यक्ति को परख पाते हैं कि ये कैसा व्यक्ति है, उसे वाइब्रेशंस जो हमें आती हैं, वाइब्रेशंस आती हैं तो लाइट होगी, कोई इलेक्ट्रिक करंट होगा तभी तो वाइब्रेशंस आती हैं, नहीं तो आप जो कहते हैं मुझे इससे अच्छी वाइब्रेशन नहीं आ रही थी तो क्या मतलब आपका। तो तो कुछ होगा ना इस शरीर के अलावा जहां से वाइब्रेशन आ रही थी। तो हर एक का होता है, लेकिन हम शुद्ध रहते हैं, पवित्र रहते हैं, भगवान के याद में रहते हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं हम, योगी हैं, ब्राह्मण कुलभूषण है, हमारा आहार विहार शुद्ध है, तो हमारी लाइट जो है वो भी शुद्ध है, जिसको कहना चाहिए भी व्हाइट लाइट है। और उसका जिसका जितना अभ्यास है, जितनी पावरफुल वो आत्मा है, उतनी पावरफुल उसकी लाइट होती है। तो अब आप अपने मन में वो सोचिए कि मेरे चहुं ओर लाइट है, मैं तो ज्योति बिंदु हूं, लेकिन मेरे चहुं ओर लाइट है, इस शरीर के साथ लाइट का शरीर है जो मुझे घेरे हुए है। उस स्थिति में आप पहुंचते चले जाएं, शरीर को भूल जाएंगे आप, और वो लाइट आप हैं, लाइट का शरीर है। चलते फिरते उठते बैठते बाबा कहते हैं जैसे चांदनी रात में चांद को हम देखते हैं, खास करके वर्षा ऋतु के बाद, वर्षा के बाद जब चांद होता है तो चांद के आसपास आप देखते हैं एक और गोल लाइट होती है। सूरज के भी आसपास आप देखते होंगे कि सूर्य की जो अपनी रूप है उसके आसपास एक और लाइट होती है, जिसको प्रभा मंडल कहते हैं या लाइट कहते हैं, लाइट का मंडल। ऐसे ही हमारा भी लाइट का मंडल है, प्रकाश का शरीर है। तो ये अभ्यास आप करते रहे, चलते फिरते उठते बैठते, इस शरीर को भूलिए, हम वो है, ये आत्मा का जो प्रकाश है वो रूप धारण करता है लाइट का। अब मन को परम धाम में ले जाएं, ब्रह्मलोक में ले जाएं, जहां गोल्डन रेड लाइट है, साइलेंस है, पवित्रता है, एकदम डीप साइलेंस है। और आपको ऐसा लगे कि वो लाइट लाइट, उस लाइट में मैं बिंदु रूप लाइट हूं, और शिव बाबा, मेरे प्रियतम शिव बाबा, मोस्ट बिलवेड फादर जो हैं, जिनसे मेरे सर्व नाते हैं, जिनसे मेरा घनिष्ठ प्यार है, जिनके प्रति मैं समर्पित हुआ हूं, मेरे वो परम प्रिय वो हैं, और उनकी लाइट और माइट मुझ पर उतर रही है। वो लाइट और माइट, मैं लाइट और माइट हूं, और शिव बाबा की लाइट और माइट, बाबा मुझ पर अपनी कृपा वृष्टि कर रहे हैं लाइट और माइट की। और कोई संकल्प ना आए, वो लाइट और माइट मुझ पर उतर रही है और मुझसे रेडिएट हो रही है, चहुं ओर रेडिएट हो रही है। तो आप और कोई संकल्प ना करके कुछ समय इसी भाव में, इसी संकल्प में अपने को एकाग्र करें, और फिर उसके बाद ये संकल्प भी नहीं रहेगा बल्कि अनुभव ही रह जाएगा, आप उस अनुभव में लवलीन हो जाएंगे। अब इसका अभ्यास आप करें, आंखें सारी खुली हों तो भी ठीक है, आधी खुली हों तो भी ठीक है, जिससे आपको रिलैक्स होके अच्छा इजी महसूस हो, लेकिन वो लाइट आपको दिखाई देनी चाहिए, माइंड की आई से, मन के चक्षु से वो लाइट दिखाई देनी चाहिए, वो जो गोल्डन रेड लाइट है। और मैं जो लाइट और माइट हूं, बिंदु रूप हूं, ज्योति स्वरूप हूं, परम धाम का वासी हूं, और अपने को वहीं देखें, इस दुनिया में ना देखें, मैं वहीं हूं लाइट और माइट की दुनिया में। और जब यहां कभी देखते हैं, अनुभव करते हैं, तो मेरा वो प्रकाश का शरीर है और मैं बिंदु हूं उसमें, ज्योति बिंदु, और मुझ पर उस शिव बाबा की लाइट और माइट उतर रही है, जो कि बहुत ही पावरफुल करंट्स के रूप में आ रही है और मुझ द्वारा सारे वर्ल्ड में रेडिएट हो रही है, बहुत पावरफुल लाइट और माइट है। उस भाव में आप टिकने का अभ्यास करें।
और इसके विषय में किसी को कोई एक आध बात पूछनी हो पूछ सकते हैं, फिर समाप्त करेंगे। आप में से कोई एक थोड़ा अनुभव सुनाना चाहे वो भी सुना सकते हैं, कोई एक आध प्रश्न करना चाहे क्योंकि समय ही इतना है तो वो भी कर सकते हैं। है किसी का कोई प्रश्न, कोई बात क्लियर ना हुई हो पूछ सकते हैं। ये तो कई बार कुछ कह के और समझा के थोड़ा अनुभव और प्रैक्टिस कराने की बात है, फिर भी बताने में कोई बात ऐसी हो जो आपको क्लियर ना हुई हो, कोई नहीं है?
कभी कभी अपने को शरीर की भी भान नहीं रहती, हम योग कर रहे हैं वो भी भान नहीं रहती है, तो वो क्या
अपने को शरीर
हम कैसे बैठे हैं वो भी याद नहीं रहता है, और कुछ याद नहीं आता जब आते हैं बाद में ऐसा लगता है कि हम कहाँ हैं, तो वो क्या योग है? उसमें बाबा की भी याद नहीं रहता है, बैठे वो भी याद नहीं रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे?
ये तो कर्मातीत से भी मेरे बताने से पहले ही समझ गए आप लोग, शायद ऐसा होता है कई लोगों का कुछ इस प्रकार से अलग अलग अनुभव रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इस बात पर ध्यान देंगे क्योंकि हमारे विकर्म तक दोगे शिव बाबा की याद से, शिव बाबा की याद हमें होनी चाहिए, लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी जब शिव बाबा की याद इमर्ज नहीं होगी, अनुभव होगा। तो अगर अनुभव हो फिर तो ठीक है, याद भी ना हो और शिव बाबा की अनुभूति भी ना हो तो वो फिर थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। तो मेरे ख्याल में अनुभव होना चाहिए, फिर भी ये भी जो अनुभव किया ठीक ही है, खराब नहीं है। इसको और थोड़ा सा अपना एम रखेंगे कि शिव बाबा को याद रखूं और आत्मा के स्वरूप में टिकूं, बाबा से मेरा कनेक्शन हो, कम से कम देह को तो भूला, थोड़ा माइंड कंसंट्रेट तो हुआ, इस दुनिया से दूर तो हुए, तो ये भी एक चलो प्राप्ति है, अचीवमेंट तो है। अब इसमें बाकी जो चीज मिसिंग है उसको ऐड कर दो तो ठीक हो जाएगा। और किसी का है कोई प्रश्न?
वैसे तो प्रश्न तो नहीं है, लेकिन जैसा कि आज भाई साहब ने क्लास कराई उसके ऊपर जो अनुभव बताया कि बाबा की स्टेज कैसी होती है, तो उसका जरूर थोड़ा सा अनुभव है। जैसे कि हम पहली बार ही भट्टी में बैठे तो 8 तारीख से भट्टी शुरू हुई, तो जब हम बाबा के कमरे में पहली बार गए सुबह, तो हम सोच नहीं पाए कि हमको इस भट्टी में क्या करना है या क्या लक्ष्य लेकर के बैठना है, तो कुछ भी समझ में नहीं आया। तो हमने बाबा को यही बोला कि आपने बुलाया है और आपके कहने पर हम आ गए, तो अब आप जैसा चाहें वैसा बना लें, क्योंकि जो सैंपल आप बनाना चाहते हैं वो शायद मेरी बुद्धि में ना हो और हम ना सोच पाए कि कैसा बनना है, तो इसलिए बाबा के ऊपर छोड़ दिया। तो उसके बाद मुझे योग लगाने की मेहनत कहें मुश्किल कहें कोई जरूरत नहीं पड़ी, सहज ही जैसे बैठते हैं तो ज्योतिबिंदु स्वरूप आत्मा और शिव बाबा की याद सहज ही याद आती है। ओम शांति।
ओम शांति।
आपने जब योग करने के लिए कहा जब आप बिंदु समझो और अपने चारों ओर एक प्रकाश की काया देखो, तो वो तो अनुभव कर ही रहते, पर जब आपने कहा कि बाहर की कोई और संकल्प ना आए तो एकदम बाहर की एक संकल्प आ ही जाता है जब आपने मना किया उस बात को, फिर आपने जब रिलैक्स छोड़ दिया फिर वो संकल्प हट गया। मतलब जब हम सोचते हैं बाहर की नहीं सोचना चाहिए तब जान के वो जबरदस्ती आ जाता है, जब हम उसको सोचते ही नहीं तो फिर बिल्कुल उस बिंदु, जैसे आपने लास्ट में कहा रेडिएट होता हुआ आप देखो, फिर आप उस समय स्टॉप कर दिया और उसी स्थिति में हम बैठे रहते।
क्योंकि बार बार अनुभव करने से होता है, यही प्रश्न गीता में भी आता है कि मेरा मन टिकता नहीं है और बातें बीच में आ जाती हैं, तो उसके उत्तर में यही कहा गया कि दो बातें जरूरी हैं योग के अभ्यास के लिए, एक तो वैराग्य और दूसरा अभ्यास। मन में अगर संसारिक कोई भी आकर्षण ना हो
किसी तरफ भी हमारा आकर्षण ना हो, वैराग्य ही हो पूर्ण रूप से, और दूसरा हम अभ्यास करते रहे, तो फिर हमारी स्टेज जो है परिपक्व हो जाएगी, वो अनुभूति हमें होगी। तो कोई संकल्प आता है तो अगर आप उसकी गहराई में जाएं कि वही संकल्प क्यों आया, दुनिया में संकल्प तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जो संकल्प आपको आया बाकी सब करोड़ों संकल्पों में से वही क्यों आया, तो आप देखेंगे कि कोई ना कोई बात ऐसी होती है जिसमें अभी हमारा वैराग्य नहीं हुआ होता। इसलिए बाबा कहते हैं भाई कोई ना कोई बात जो है नष्टो मोह सबका आ गया। मोह कोई स्थूल रूप से नहीं, स्थूल रूप से कोई मोह तो वो तो अब मेरे ख्याल में आप सब लोगों ने उससे फारिग हो गए होंगे, लेकिन मोह सूक्ष्म कई चीजों में कई तरह का होता है। तो वो जो संकल्प आते हैं जरूरी नहीं मोह के कारण से हों, लेकिन मोह का जो विपरीत भाव है उसके कारण से भी हो सकते हैं। तो कोई भी जो संकल्प आता है उसको आप देखने की कोशिश करें कि ये संकल्प क्यों आया। अब जैसे कोई व्यक्ति की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई मान लो कोई डॉक्टर ही है, कोई पेशेंट उसकी जिम्मेवारी में उसके इलाज में है, अब वो योग में बैठा है, उसको सडनली ख्याल आया कि पेशेंट को मुझे देखना है, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अब ये कोई मोह की बात तो नहीं है, ये कोई वैराग्य नहीं है इसकी बात भी नहीं है, ये तो रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। उसको ख्याल में आ गया कि ये तो मेरा कर्तव्य है, मैं डॉक्टर हूं और उसके लिए मुझे सैलरी मिलती है या मेरे जिम्मे लगाया गया है, तो मुझे उधर ध्यान देना चाहिए, मैं तो योगी लगा रहा हूं, तो आ गया उसमें संकल्प। लेकिन यही संकल्प क्यों आया? तो ये हमारा जो अभ्यास है कम है, क्योंकि देखिए जैसे कार में दो चीजें होती हैं, एक स्टार्टर होता है जिससे हम गाड़ी को चलाएं, दूसरा ब्रेक होता है जिससे हम ब्रेक लगाएं। तो मुझे, मैंने कार चलाना सीखा तो नहीं, लेकिन मुझे यही मालूम हुआ कि बताया गया कि ब्रेक लगाना सिखाते हैं पहले, क्योंकि अगर चला बैठा और ब्रेक ना लगा सका वो तो किसी वृक्ष या दीवार के साथ जाकर टकराएगा, कार भी खत्म करेगा और अपना सिर भी टकराएगा, उसका क्या कार सीखेगा, कार की बजाय बेकार हो जाएगा वो। तो इसलिए ये जो ब्रेक लगाना है संकल्प को, बिंदु लगाना, जब भी हम चाहें, जब चाहें जो चीज सोचें, जब चाहें ना सोचें, तो ये अभ्यास से आती है कि हम कोई भी संकल्प ना करें, ये हमारी इच्छा के ऊपर हो, चाहें तो करें चाहें तो ना करें। ये अभ्यास जैसे जैसे हम करेंगे वैसे वैसे हमारा उसमें फिर कोई संकल्प आएगा नहीं। लेकिन ये शुरुआत में ये सब चीजें होती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर मान लो अनुभव होता है या मन स्थिर होता है, एक दफा अगर आपको वो स्वाद आ गया, वो चस्कर लग गया, वो चाशनी चख ली आपने, फिर उसको छोड़ेंगे नहीं। फिर आपका मन करेगा कि उसको, हम छोटा बच्चा जब उसको आम खिला दो और एक दफा उसको अच्छा लग जाए ये आम है, तो बाजार से दफ्तर से जब उसके पापा आते हैं तो कहता है मेरे लिए आम लाए हो, वो पापा से आम की उम्मीद रख के बैठा है कि वो आएंगे तो आम ले आएंगे। आप पापा से भी ज्यादा प्यार उसका आम के साथ हो गया। आइसक्रीम खाता है तो ये कहेगा मम्मी आज आइसक्रीम बनाई है, जरा आइसक्रीम खिला दो, क्योंकि उसको चस्का लग गया, थोड़ी उसको उसमें लज्जत आ गई, वो चख लिया उसने और स्वाद बैठ गया उसका। तो जब आपको ये कर्मातीत स्टेज का या योग का अनुभव हो, जितना जितना होगा, फिर वो ऐसा सहज होगा कि वो खींचेगा आपको, आप उससे हटना चाहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा और वो खिंचा हुआ जाएगा। वो है ना, कच्चे धागे से खिंची आती है सरकार मेरी, वो कच्चे धागे से ही खींचे चले जाएंगे आप, कोई उसमें आपको ज्यादा जफाकशी करने की जरूरत नहीं होगी, ये अभ्यास की जरूरत है। इस पर थोड़ा ध्यान देने से लाइट और माइट स्वरूप ही होंगे, चलते फिरते उठते बैठते हम ध्यान नहीं देते, हमने समझ लिया हम आत्मा हैं, कहते भी हैं हम आत्मा हैं, लेकिन हम चलते शरीरों की तरह से हैं, जैसे कोई लाश चल रही हो, आत्मा का हमको ख्याल नहीं रहता है, देह चल रहा हो, पहले जैसी दृष्टि बनी हुई है। तो ये अगर हमारा अभ्यास हो अच्छा, अगर बिंदु रूप नहीं भी याद कर सकते तो लाइट का शरीर है, एक फरिश्ता चल रहा है, अगर इसका भी हमारा अभ्यास होने लगे तो हम नजदीक तो पहुंचेंगे उस स्टेज के, वो भी अभी हमारा अभ्यास नहीं। तो देखिए हम कितनी दूर हैं, हमारी जो मंजिल है जो गोल है उससे कितनी दूर हैं। बहुत कामों में हम लगे हुए हैं, बहुत लफड़ों में हम लगे हुए हैं, जो असली बातें हैं उनको छोड़ के हम बैठे हैं। नतीजा उसका क्या होगा वो समझ लें हम। इसलिए अभ्यास और वैराग्य इसका ध्यान देंगे तो वो स्टेज जरूर प्राप्त होगी। ओम शांति।